डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट साहित्य। व्याख्यान 30, जेम्स और पॉल। 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं, जेम्स और पॉल पर व्याख्यान 30। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो करना चाहता हूँ वह जेम्स के बारे में हमारी चर्चा को समाप्त करने का प्रयास करना है और ध्यान केंद्रित करना है। हम दो कारणों से अधिकांश समय एक विशेष पाठ पर ध्यान केंद्रित करने में बिताएंगे। एक तो यह कि ऐसा लगता है कि यह एक तरह से जेम्स के दिल में है और उसके पत्र के बारे में जो विशिष्ट और अनोखा है उसका सारांश प्रस्तुत करता है। लेकिन दूसरा, इसने काफी सवाल और विवाद पैदा कर दिया है कि हम इसे कैसे पढ़ते हैं और यह पॉल के पत्रों और पॉल की शिक्षाओं के साथ जेम्स के संबंध के बारे में क्या कहता है। और इसलिए मैं विशेष रूप से उस पाठ को देखने में थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन जिन दो अन्य विषयों पर हमने बात की उनमें से दो को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमने कहा कि जिस तरह से जेम्स को एक साथ रखा गया है उसे समझने का एक तरीका यह है कि जेम्स के पत्र को तीन अलग अलग विषयों के माध्यम से लगातार चक्र के रूप में देखा जाए। कभी कभी उन्हें थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखें, लेकिन परीक्षण और सहन शक्ति का विषय और फिर धन और गरीबी का विषय और फिर ज्ञान और भाषण। मैं उन सभी विषयों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो मुख्य रूप से जेम्स और जेम्स के शिक्षण और विश्वास और कार्यों के संबंध में अध्याय दो पर केंद्रित होंगे। वह किस पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं और पॉल के प्रकाश में हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं ने भी कहा है। लेकिन ऐसा करने से पहले आइए प्रार्थना शुरू करें। पिता, हम हमारे साथ आपकी उपस्थिति और आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं जब हम उस बारे में सोचते हैं और चर्चा करते हैं जो हमारे लिए रहस्योद्घाटन में आपके शब्दों से कम नहीं है। और फिर जैसा कि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, क्या हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इस पाठ का क्या अर्थ है और इसे पहले पाठकों ने कैसे स्वीकार किया होगा। लेकिन साथ ही क्या हम इसे आज भी आपके लोगों के सामने आपके बारे में चल रहे रहस्योद्घाटन के रूप में सुनना जारी रख सकते हैं? और क्या हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इसके आलोक में कैसे प्रतिक्रिया देनी है? यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। ठीक है। मुद्दों में से एक जब जेम्स की व्याख्या करने की बात आती है जिसे हमने देखा है और आपके नोट्स में मैं अब विश्वास और कार्यों के विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका परिचय देने के लिए हमने कहा कि जेम्स की पुस्तक है, अक्सर पॉलीन के बाद के संदर्भ में पढ़ा जाता है, अर्थात हमें इसे पढ़ना सिखाया गया है या हम पॉल के पत्रों से परिचित होने के आलोक में इसे पढ़ने के आदी हैं और पॉल किस बात पर जोर देना चाहते हैं, विशेष रूप से मार्टिन लूथर की विरासत और औचित्य पर उनके जोर के कारण केवल विश्वास के माध्यम से भगवान की कृपा से और किसी भी कार्य पर निर्भर नहीं है जो हम योग्यता या कमाई के लिए करते हैं। और एक अर्थ में वह शुद्ध सुसमाचार का सार बन गया है जो अब एक फिल्टर या कम से कम एक मापने वाली छड़ी बन गया है जिसके द्वारा हम नए नियम की अन्य सभी पुस्तकों को मापते हैं। और यह निश्चित रूप से शायद इस तथ्य को भी उजागर करेगा कि पॉलिन पत्रिया नए नियम के ठीक केंद्र में बहुत अच्छी तरह से स्थित हैं। एक अर्थ में आपके पास इसके पहले गॉस्पेल और अधिनियम है, लेकिन उसके बाद बाकी सब कुछ आता है, इसलिए न्यू टेस्टामेंट कैनन के केंद्र में पॉल के पत्र हैं जो एक मापने वाली छड़ी के रूप में कार्य करते हैं कि हम बाकी सब कुछ कैसे पढ़ते और समझते हैं। तो इस तथ्य के कारण कि कम से कम अनुक्रमिक पढ़ने में यह तथ्य कि हम पॉल के पत्रों पर सबसे पहले आते हैं, एक अर्थ में हमें यह स्थापित करने के लिए लगता है कि हमें शेष नए नियम को कैसे पढ़ना है। तो हम इब्रानियों की ओर आते हैं और हम जेम्स और अन्य पत्रों की ओर आते हैं जिनमें पॉल का सुसमाचार पूरी तरह से हमारे दिमाग में बसा हुआ है। अर्थात ईश्वर ने मुक्ति और औचित्य के लिए एक रास्ता प्रदान किया है जो मेरे द्वारा योग्यता प्राप्त करने या उसे अर्जित करने के लिए किए जाने वाले किसी भी कार्य पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मसीह में ईश्वर के दयालु कार्य पर आधारित है। और एकमात्र उचित प्रतिक्रिया यीशु मसीह में विश्वास है। तो हम विश्वास के माध्यम से भगवान की कृपा से बचाए गए हैं, और यह तुम्हारा नहीं है, यह परमेश्वर का उपहार है। यह मानवीय कार्यों से नहीं आता है, ताकि कोई घमंड न करे। इफिसियों की पुस्तक से पॉल के शब्दों का उपयोग करें। अब फिर यह लगभग एक लेंस बन जाता है जिसके माध्यम से हम शेष नए नियम को पढ़ते हैं। और शायद मैं यह सुझाव दूंगा कि हम में से ज्यादातर लोग शायद अवचेतन रूप से ऐसा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने पॉल के पत्रों को प्रमुखता से स्थान दिया है, और वह एक प्रकार का ग्रिड बन जाता है जिसके माध्यम से हम शेष नए नियम को पढ़ते हैं। इसलिए क्या होता है जब हम ऐसी किताब के पास आते हैं जैसे जेम्स नंबर एक है, जेम्स को या तो पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा या कम से कम उपेक्षित कर दिया जाएगा, जैसा कि मार्टिन लूथर ने किया था। जब आप इसे पॉल के विरुद्ध खड़ा करते हैं तो जेम्स को या तो अस्वीकार कर दिया जाता है या कम से कम उपेक्षित कर दिया जाता है और न्यू टेस्टामेंट कैनन की परिधि में धकेल दिया जाता है। या हम जेम्स की पुनर्व्याख्या करते हैं, हम एक तरह से जेम्स को जेम्स से बचाते हैं और हम उसे पॉल जैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए हम जेम्स की इस तरह से पुनर्व्याख्या करते हैं या पढ़ते हैं कि वह बिल्कुल पॉल के संदेश की तरह लगता है कि आप केवल ईश्वर की कृपा से और विश्वास के माध्यम से बचाए गए हैं और किसी मानवीय कार्य पर आधारित नहीं हैं। इसे रखने का दूसरा तरीका, न्यू टेस्टामेंट के छात्र अक्सर इसे कैनन के भीतर एक कैनन की स्थापना कहते हैं। तो नए नियम के धर्मग्रंथ के बड़े सिद्धांत के भीतर कार्यों का एक सेट है जो सिद्धांत के भीतर अन्य सभी पुस्तकों के लिए मापने वाली छड़ी के रूप में उभरता है, एक उभरते हुए सिद्धांत की तरह, एक मापने वाली छड़ी जिसका सिद्धांत में एक केंद्रीय स्थान है जिसके द्वारा अन्य सभी पुस्तकों को पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए, और वे आम तौर पर पॉल के पत्र होते हैं। और फिर इसमें से बहुत कुछ मार्टिन लूथर की विरासत में जाता है, जिसमें हम मार्टिन लूथर से बहुत सी अच्छी चीजें सीखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजें हमारे लिए अक्सर पारित की गई हैं, उनमें से एक यह है कि हमें पॉल के पत्रों के लेंस के माध्यम से नए नियम को पढ़ना सिखाया जाता है, और इसलिए फिर या तो जेम्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है या बुरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, या फिर रोमन और गैलाटियन जैसे पॉल के पत्रों के प्रकाश में जेम्स को पुनः कॉन्फिगर और पुनर्व्याख्या की जाती है। हालांकि कुछ बातें, नंबर एक, जैसा कि मैंने कहा, कई शुरुआती न्यू टेस्टामेंट सूचियां थीं, यानी न्यू टेस्टामेंट किताबों की सूचियां, जो वास्तव में दिलचस्प रूप से जेम्स को पॉल के पत्रों से पहले रखती थीं। और जबकि मुझे लगता है कि इससे बस यह पता चलता है कि शुरुआती चर्च को किताबों को महत्व के संदर्भ में ऑर्डर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, या यह हमारे उन्हें पढ़ने के तरीके को कैसे प्रभावित करना चाहिए। लेकिन यह पूछना दिलचस्प होगा, हालांकि यदि क्रमबद्ध रूप से, और यह असंभव है क्योंकि हम नए नियम के बारे में सोचने के इस तरीके से बहुत प्रभावित हुए हैं, मुझे लगता है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा यदि हम पहले जेम्स के पास आएं और फिर बाद में पॉल के पत्र पढ़े। क्या इससे पॉल की व्याख्या करने के तरीके में कोई फर्क पड़ेगा? क्या हम इसके विपरीत जेम्स के प्रकाश में पॉल को पढ़ेंगे? लेकिन मुझे संदेह है कि प्रारंभिक चर्च पुस्तकों को इस तरह से ऑर्डर करने में रुचि रखता था जिससे किसी विशेष पुस्तक को स्थान और फोकस की प्रधानता मिले। पॉल के पत्र आम तौर पर अधिनियमों का पालन करते हैं। इसका कारण सबसे अधिक संभावना है क्योंकि अधिनियमों की अधिकांश पुस्तक अंत तक प्रेरित पॉल पर हावी है। तो यह स्वाभाविक है कि आगे उनकी किताबें आएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अधिक महत्वपूर्ण हैं या उन्हें एक लेंस प्रदान करना चाहिए जिसके माध्यम से शेष नए नियम को पढ़ा जा सके। हालांकि मैं आश्वस्त हूं कि जब जेम्स के पत्र की बात आती है और जेम्स और पॉल के संदर्भ में सोचने की बात आती है, तो सबसे पहले उन्हें समेटने और उन्हें एक साथ रखने की कोशिश करना वैध है। आखिरकार चर्च ने इन दोनों को अपने धर्म ग्रंथों में शामिल किया, इसलिए यह आवश्यक है और दिन के अंत में यह पूछना जरूरी है कि ये दोनों पुस्तकें कैसे संबंधित हैं। और पहेली के टुकड़ों को एक साथ रखना, मुझे लगता है कि विहित धर्म ग्रंथ के हिस्से के रूप में यह आवश्यक है कि चर्च ने इन्हें भगवान के रहस्योद्घाटन के धार्मिक गवाहों के रूप में अनुमति दी कि चर्च में जेम्स और पॉल के पत्रों जैसी किताबें शामिल होंगी, ताकि दिन के अंत में हमें यह पूछने की जरूरत हो कि वे कैसे हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं और हम उन्हें एक साथ कैसे फिट कर सकते हैं। साथ ही हालांकि ऐसा करने से पहले मैं आश्वस्त हूं कि हमें प्रत्येक लेखक को अपनी आवाज देने की अनुमति देनी होगी, अर्थात हम जेम्स को पॉल की तरह नहीं बना सकते, नहीं इसके विपरीत, लेकिन हमें उन्हें अपनी आवाज और अपना विशिष्ट स्वाद रखने की अनुमति देनी होगी इससे पहले कि हम उन्हें एक साथ रखें और पूछें कि वे एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं, लेखन के इस संपूर्ण सिद्धांत के भीतर वे एक साथ कैसे एकजुट हो सकते हैं जिसे चर्च अपने धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करता है। तो मैं यही करना चाहता हूं। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले शायद इन लेखकों के बारे में क्या अनोखा लगता था, वे किस बात पर जोर दे रहे थे, इससे पहले कि हम यह प्रश्न पूछें कि हम इन्हें एक साथ कैसे रखें, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, क्या जेम्स और पॉल एक दूसरे से झगड़ते हैं, क्या वे एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, क्या वे भी वही बात कह रहे हैं, क्या वे समान बातें कह रहे हैं लेकिन अलग अलग जोर के साथ, या हम उन्हें एक साथ कैसे रखेंगे, हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर जो खंड मेरे दिमाग में मुख्य रूप से है वह जेम्स अध्याय 2 है, जो श्लोक 14 से शुरू होता है, जो विश्वास और कार्यों से संबंधित जेम्स की शिक्षाओं पर सबसे विस्तारित खंड है, हालांकि यह एकमात्र जगह नहीं है जहां वह इसे कहता है। वह कार्यों और विश्वास के बारे में अध्याय 1 के पहले छंदों में ही कुछ कहता है और अन्यत्र इसका उल्लेख करता है, परंतु यह सबसे विस्तृत शिक्षा है जहां जेम्स कहते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों, यदि तुम कहते हो कि तुम में विश्वास तो है परंतु तुम्हारे पास काम नहीं, तो क्या फायदा, क्या वह विश्वास तुम्हें बचा सकता है। यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े और दैनिक भोजन की कमी है और तुम में से कोई उनसे कहता है शांति से जाओ, गर्म रहो और भरपेट खाओ, और फिर भी तुम उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते, तो उस विश्वास का क्या फायदा। इसलिए विश्वास अपने आप में, यदि इसमें कोई कार्य नहीं है, मरा हुआ है। परंतु कोई कहेगा तुम विश्वास रखते हो और मैं कर्म करता हूँ, मुझे कर्मों से अलग अपना विश्वास दिखाओ और मैं अपने कामों से तुम्हें विश्वास दिखाऊंगा। यदि आप मानते हैं कि ईश्वर एक है तो आप अच्छा कर रहे हैं, परंतु राक्षस भी उस पर विश्वास करते हैं और कांप उठते हैं। हे मूर्ख मनुष्य, क्या तुम यह दिखाना चाहते हो कि कर्मों के बिना विश्वास मर गया है। क्या हमारे पूर्वज इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाकर कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया था। आप देखते हैं कि विश्वास उसके कार्यों के साथ साथ सक्रिय था और उन कार्यों के द्वारा विश्वास को पूर्णता तक लाया गया था। इस प्रकार पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हुआ जिसमें कहा गया था कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। एक पाठ जिसे पॉल भी उद्धृत करता है। अब जेम्स यह प्रदर्शित करने के लिए इसे उद्धृत करता है कि इब्राहिम अपने कार्यों से न्यायसंगत था और वह परमेश्वर का मित्र कहलाता था। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से न्यायसंगत होता है। और मैं वहीं रुकूंगा। और यह आखिरी कविता है जिसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि ऐसा लगता है कम से कम औपचारिक रूप से और मौखिक स्तर पर पॉल ने रोमन और गैलाटियन में जो कहा है उसके विपरीत कि आप कार्यों से नहीं बल्कि केवल विश्वास से उचित ठहराए जाते हैं यीशु मसीह में। तो कई गलातियों में, रोमियों में पॉल यह बयान देता है कि एक व्यक्ति गलातियों में न्यायसंगत है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि हम कानून के कार्यों से नहीं बल्कि यीशु मसीह में विश्वास से न्यायसंगत हैं। तो कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि जेम्स को इस तरह से सूत्रबद्ध करने के लिए क्या प्रेरित करता है कि कहें, ठीक है, नहीं, आप कर्मों से न्यायसंगत हैं, न कि केवल विश्वास से। स्पष्ट करने वाली पहली बात यह है कि मुझे संदेह है कि जेम्स पॉल को जवाब दे रहा था या इसके विपरीत। मुझे संदेह है कि जेम्स और पॉल एक दूसरे के आलोक में लिख रहे थे। और कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि शायद जेम्स पॉल की अत्यधिक प्रतिक्रिया का जवाब दे रहा था। कुछ लोगों ने पॉल के लेखन पर अत्यधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अब जेम्स उस पर प्रतिक्रिया देता है। कुछ लोगों ने कहा है कि जेम्स पॉल से पूरी तरह असहमत हैं। लेकिन मुझे वास्तव में संदेह है कि इस बात के अच्छे सबूत हैं कि जेम्स और पॉल एक दूसरे के बारे में जानते थे और उनमें से एक दूसरे को जवाब देने के लिए लिख रहा है। तो ऊपर क्या है, क्या चल रहा है? जब हम जेम्स अध्याय 2 को देखते हैं तो पहली चीज जो मुझे लगता है कि हमें करने की जरूरत है वह है समझना। और मैं फिर से विशेष रूप से मेरे द्वारा अभी पढ़ी गई अंतिम कविता पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ जो पॉल के कथन के साथ सबसे स्पष्ट रूप से विरोधाभासी प्रतीत होती है, जहाँ जेम्स कहते हैं, आप केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धर्मी ठहराए जाते हैं, जैसा कि पॉल ने कहा था, नहीं, आप विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं, कर्मों से नहीं। यीशु मसीह में विश्वास, कर्मों से नहीं। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि उन बयानों के कुछ घटकों का उपयोग अलग अलग लेखकों द्वारा अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स और पॉल के बीच अंतर को संभालने का पहला तरीका यह समझना है कि जेम्स और पॉल दोनों बहुत अलग मुद्दों या समस्याओं को संबोधित कर रहे हैं। यदि आपको हमारी चर्चा याद हो, विशेष रूप से गैलाटियंस की, तो पॉल एक ऐसे समूह के साथ बहस में उलझा हुआ था जिस पर यहूदीवादियों का लेबल लगाया गया था, जो सुझाव दे रहे थे कि भगवान के सच्चे लोग बनने के लिए अन्य जातियों को मूसा के कानून के प्रति समर्पण करना होगा। हाँ, मसीह में विश्वास आवश्यक था, लेकिन किसी को मोज़ेक कानून के प्रति समर्पण भी करना था। रोमन यहाँ तक कि यहूदियों के बारे में भी बात करते हैं जो अपनी वंशावली पर इस तथ्य पर गर्व करते हैं कि वे जन्म से इब्राहिम के यहूदी बच्चे हैं, इस तथ्य पर कि उनके पास कानून है, कि उनकी प्रवृत्ति उस पर घमंड करने की थी और उनकी स्थिति और स्थिति एक संकेत के रूप में थी, वे सचमुच परमेश्वर के लोग थे। तो पॉल जिस समस्या को संबोधित कर रहा था वह मुख्य रूप से विधिवाद और राष्ट्रवाद दोनों थी। राष्ट्रवाद यहूदी और गैर यहूदी के बीच अंतर करने के लिए कानून का उपयोग कर रहा है, लेकिन उस कानून पर भरोसा करके और उसे अन्य जातियों पर थोपकर वे भी कानूनीवाद के दोषी थे, जो धर्मी घोषित होने के तरीके के रूप में कानून के कार्यों के प्रदर्शन पर भरोसा कर रहा है या प्रमाणित या उचित ठहराया जाना। जेम्स एक बहुत ही अलग मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं। फिर समस्या का एक हिस्सा यह है कि आमतौर पर जब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम कविता से शुरू करते हैं। हम आम तौर पर जेम्स अध्याय 2 में कविता 18 से शुरू करते हैं। लेकिन वास्तव में अध्याय दो में मुख्य विषय आस्था और कार्य नहीं है। मुख्य विषय गरीबी और अमीरी का विषय है। पुनः पद 14 में, इससे पहले कि जेम्स आस्था और कार्यों के बारे में बात करना शुरू करे, यहाँ बताया गया है कि वह इसका परिचय कैसे देता है। हे मेरे भाइयों, यदि तुम कहते हो कि तुम में विश्वास तो है परंतु काम नहीं, तो क्या वह विश्वास तुम्हें बचा सकता है? यदि किसी भाई या बहन को भोजन और प्रतिदिन वस्त्र और प्रतिदिन के भोजन की घटी हो और तुम में से कोई कहे शांति से जाओ और गर्म रहो और तृप्त रहो, परंतु उनकी पूर्ति के लिए कुछ न करो, तो उस विश्वास का क्या लाभ? सो वह विश्वास अपने आप में, यदि उसमें कर्म न हो, मरा हुआ है। इसलिए जेम्स की आस्था और कार्यों की पूरी चर्चा उनके कुछ पाठकों की उन लोगों की मदद करने में विफलता के संदर्भ में आती है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। इसलिए वह कहते हैं, यदि आप किसी भाई बहन को देखते हैं जो अत्यंत जरूरतमंद हैं, उनके पास कोई कपड़े नहीं हैं, उनके पास कोई भोजन नहीं है, और आप बस कहते हैं शांति से जाओ और गर्म रहो और तृप्त रहो, और आप इसके बारे में कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाते, जेम्स इसी समस्या का समाधान कर रहा है। लगभग कुछ अर्थों में पॉल की समस्या के बिल्कुल विपरीत। पॉल उन लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं जो अपनी यहूदी विरासत और कानून के कब्जे पर भरोसा कर रहे हैं, और यहां तक कि इसे अन्य जातियों पर भी थोप रहे हैं। जेम्स बिल्कुल विपरीत समस्या का समाधान कर रहे हैं। जो लोग सख्त जरूरत वाले लोगों के प्रति प्रेम और दान के कार्य दिखाने की अपनी जरूरत का बहाना बना रहे हैं और उस सब को इस तथ्य की आड़ में छिपा रहे हैं कि उनके पास विश्वास है, और जेम्स अब उस पर प्रतिक्रिया देने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पहला सुराग यह तथ्य है कि जेम्स और पॉल दो अलग अलग मुद्दों या समस्याओं को संबोधित कर रहे हैं। हम इन्हें एक साथ रखकर यह पूछना शुरू नहीं कर सकते कि हम इनका समाधान कैसे करें। हम जेम्स को पॉल जैसा कैसे बना सकते हैं? लेकिन इसके बजाय हमें इस तथ्य से शुरुआत करनी होगी कि ये दोनों लेखक पूरी तरह से अलग अलग मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं, और हम बिल्कुल नहीं जानते कि जेम्स ने पॉल की स्थिति के बारे में क्या कहा होगा या उसने जेम्स की स्थिति को कैसे संबोधित किया होगा आवश्यक रूप से। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि पॉल मोज़ेक कानून के संबंध में कानूनवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दों को संबोधित कर रहा है। जेम्स उदासीनता, प्रेम और दान के कार्यों को दिखाने में विफलता और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति उदासीनता को संबोधित कर रहा है जिसे इसकी सख्त जरूरत है। इन दो कथनों में महसूस करने योग्य दूसरी बात पॉल का कथन कि आप विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं, आप यीशु मसीह में विश्वास द्वारा बचाए गए हैं न कि कानून के कार्यों से, और जेम्स का कथन कि आप नहीं हैं केवल विश्वास के द्वारा बचाया जाता है लेकिन आप कार्यों के द्वारा बचाए जाते हैं। जेम्स और पॉल उन दो कथनों में विश्वास का उपयोग इस बात पर सहमति में कर रहे हैं कि वे क्या सोचते हैं कि सच्चा विश्वास क्या है। लेकिन इन बयानों में जब पॉल कहते हैं आप केवल विश्वास से बचाए जाते हैं, और जब जेम्स कहते हैं आप केवल विश्वास से नहीं बचाए जाते हैं, तो वे विश्वास का उपयोग थोड़े अलग तरीकों से कर रहे हैं। पॉल के लिए जब पॉल कहते हैं कोई व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास से न्यायसंगत है, तो मुझे लगता है कि वह विश्वास शब्द का उपयोग मुख्य रूप से यीशु मसीह के व्यक्ति के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता, यीशु मसीह में पूरे दिल से विश्वास और प्रतिबद्धता के अर्थ में करता है। जब जेम्स कहते हैं आप केवल विश्वास से उचित नहीं ठहराए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि संदर्भ स्पष्ट करता है कि वह मुख्य रूप से सही विश्वास के लिए बौद्धिक सहमति का उल्लेख कर रहे हैं। इसका कारण यह है, जेम्स मूल रूप से श्लोक 19 अध्याय 2 श्लोक 19 में हमें बताता है, तुम विश्वास करते हो कि ईश्वर एक है जो यहूदी शेमा का प्रतिबिंब है, सुनो हे इसराइल, प्रभु तुम्हारा ईश्वर प्रभु एक है। तो वह कहते हैं, आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है, यह अच्छा है, आप अच्छा करते हैं, यही आपको विश्वास करना चाहिए। लेकिन फिर वह आगे बढ़ता है और कहता है, लेकिन यहाँ तक कि राक्षस भी इस पर विश्वास करते हैं और वे इस संभावना पर कांपते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जेम्स जो कह रहा है वह यह है कि केवल एक सच्चे ईश्वर में विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है। और जो केवल यह दावा करता है कि उसके पास कोई पेशा है या वह सही पेशा कह सकता है कि यीशु मसीह एक है, उसके पास यह है, जबकि बौद्धिक रूप से यह सही है, उसका विश्वास उन राक्षसों से अलग नहीं है जो कबूल करते हैं, जो एक ही बात को समझते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आस्था में कोई बौद्धिक घटक नहीं है। जेम्स यह नहीं कह रहा है कि यह गलत या अनावश्यक है, वह सिर्फ यह कह रहा है कि यह पर्याप्त नहीं है, कि यह तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जेम्स आगे जाकर प्रदर्शित करने जा रहा है कि हाँ, ऐसा है, जैसा कि मुझे लगता है कि पूरे चर्च के इतिहास में कई विचारकों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, विश्वास में निश्चित रूप से एक बौद्धिक घटक है। मेरा मतलब है, विश्वास किसी ऐसी चीज पर विश्वास करना नहीं है जो सच नहीं है, या हम साबित नहीं कर सकते कि वह सच है, यह विश्वास नहीं है, यह भोला होना है। लेकिन विश्वास भरोसा है, विश्वास भगवान और उसके वादों पर भरोसा है। और इसलिए जेम्स कहते हैं कि केवल ऐसा विश्वास रखना जो विश्वास करता है और स्वीकार करता है कि ईश्वर एक है, हाँ, यह अच्छा है और यह सच है, लेकिन यह अपर्याप्त विश्वास है, वह तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। और जेम्स आगे जाकर जो सुझाव देने जा रहा है, हालांकि जैसा कि हम बस एक क्षण में देखेंगे, वह केवल शुरुआती बिंदु है। दरअसल मुझे लगता है कि जेम्स आस्था के तीन घटकों को समझता है, लेकिन वह उन्हें एक दूसरे से संबंधित और परस्पर क्रिया के रूप में देखता है। उनमें से एक, जैसा कि हमने कहा, पहले से ही बौद्धिक है, ईश्वर में विश्वास कि ईश्वर एक है। लेकिन दूसरा, पॉल के समान, हमने कहा कि पॉल का विश्वास से क्या मतलब है, जेम्स विश्वास को विशेष रूप से पुराने नियम के प्रकाश में एक प्रतिबद्धता के रूप में और किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास के रूप में समझता है जो भरोसेमंद है। फिर भी तीसरा घटक, इसलिए हमारे पास ईश्वर कौन है, इस पर सही विश्वास के लिए बौद्धिक सहमति है, लेकिन दूसरा, उसके प्रति प्रतिबद्धता, विश्वास और उसके प्रति पूरे दिल से प्रतिबद्धता है। लेकिन तीसरा घटक वफादारी है, विश्वास और प्रतिबद्धता वास्तव में चल रही वफादारी में मायने रखती है, जो परीक्षण के बीच भी खुद को प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में जेम्स कहते हैं कि सच्चा विश्वास और प्रतिबद्धता अंतः समाप्त हो जाएगी या अंतः सच्ची वफादारी बन जाएगी। यही वह है जो भरोसा करता है और प्रतिबद्ध होता है, फिर उस व्यक्ति के वादों और आदेशों के प्रति ईमानदारी से रहता है जिस पर उन्हें विश्वास है। तो वे तीन विचार, बौद्धिक विश्वास और ईश्वर कौन है, इस पर सहमति, पूरे दिल से विश्वास और प्रतिबद्धता, लेकिन निरंतर विश्वासयोग्यता, विशेष रूप से उस विश्वास के परीक्षण के प्रकाश में। और हम देखेंगे, यही कारण है कि जेम्स अब्राहम को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करता है। वह आस्था के इन तीनों घटकों का एक उदाहरण है। फिर मैं विश्वास के प्रकारों के बारे में नहीं कहना चाहता, यह वह नहीं है जो जेम्स कह रहा है कि तीन, आप तीनों के बिना विश्वास नहीं कर सकते, यह जेम्स की बात है कि उनमें से सिर्फ एक ही सच्चा विश्वास नहीं है। खैर, हम बाद में जिस बारे में थोड़ी बात करेंगे वह वास्तव में है। मुझे यकीन नहीं है कि जेम्स और पॉल वास्तव में आस्था को किसी अलग तरह से समझते हैं। वे उन तीन तत्वों को एक साथ रखने के तरीके पर जोर दे सकते हैं, लेकिन जिस पर वे जोर देते हैं वह अलग हो सकता है। लेकिन उदाहरण के लिए, निश्चित रूप से पॉल विश्वास के बौद्धिक तत्व यीशु मसीह निर्माता ईश्वर में सच्चे विश्वास को सही ढंग से समझने में रुचि रखता है। और जैसा कि हमने देखा है, पॉल निश्चित रूप से यीशु मसीह के व्यक्तित्व और भगवान के वादों में पूरे दिल से प्रतिबद्धता और विश्वास में रुचि रखता है। फिर भी निश्चित रूप से हम देखेंगे कि पॉल निरंतर वफादारी में भी रुचि रखता है, जो उसी का हिस्सा है, जिसका उदाहरण आज्ञाकारिता में है। और फिर मैं उन्हें तीन के रूप में देखने का विरोध करता हूँ। मैं उनके बारे में तीन अलग अलग चीजों के रूप में बात नहीं करना चाहता। वे सभी एक सच्चे विश्वास के आवश्यक भाग या आवश्यक पहलू हैं। और जेम्स की समस्या यह है कि वह उन पाठकों को संबोधित कर रहा है जो केवल उस पहले तत्व से संतुष्ट हैं। शायद दूसरा तत्व भी सिर्फ एक विश्वास या प्रतिबद्धता है, लेकिन विशेष रूप से वह जो बौद्धिक चढ़ाई से आगे नहीं जाता है। हाँ, भगवान एक है, लेकिन जब पूर्ण प्रतिबद्धता के अन्य पहलुओं की बात आती है, जो परीक्षण के बाद भी चल रही वफादारी में प्रकट होती है, तो उसके पाठकों की कमी दिखाई देती है। यदि आप इस तरह का वर्णन करते हैं, तो हो सकता है कि वह कह रहा हो कि वास्तव में आपके पास इच्छा नहीं है, और इसलिए वह नहीं है। आपके पास वास्तव में वह सच्चाई नहीं है। तो विश्वास को मोक्ष के साथ साथ उसके बाद आने वाले कार्यों के बराबर होना चाहिए। लेकिन वहां जब वह इसे देख रहा है और कह रहा है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि आपको सच्ची आस्था है, सही? या कम से कम जब हम कहते हैं तो उसका उल्लेख नहीं करते। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह जेम्स यह नहीं कह रहा है कि आपके पास अपर्याप्त विश्वास है। वह कह रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मेरा मतलब है, वह कितना अधिक स्पष्ट हो सकता है जब वह कहता है कि यदि आपके पास काम नहीं है तो आपका विश्वास मर चुका है। वह यह नहीं कहता कि यह मर गया है या यह बीमार है या इसे बस थोड़ा सा हवा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, तुम्हारा विश्वास मर चुका है। तो आप बिल्कुल सही हैं। ऐसा नहीं है कि वह कह रहा है, ठीक है, आपको विश्वास का एक हिस्सा सही मिला है, आपको बस इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। वह मूल रूप से कह रहा है, नहीं, यदि आपके पास पूरी चीज नहीं है तो आपका विश्वास मर चुका है। यह किसी काम का नहीं, काम करता है। तो फिर पॉल और जेम्स दोहराने के लिए विभिन्न स्थितियों को संबोधित कर रहे हैं। पॉल यहूदीवादियों को संबोधित करते हैं जो गैर यहूदियों को मूसा के कानून के अधीन होने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कानून को एक सीमा चिन्हक के रूप में भगवान के लोगों से संबंधित एक सच्चे पहचान कारक के रूप में जोर दिया। इसलिए पॉल विधिवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं। जेम्स उदासीनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं, जो आस्था रखने का दावा करते हैं लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ करने की जहमत नहीं उठाते जिसे इसकी सख्त जरूरत है। और इसलिए जेम्स कहते हैं, वह वास्तविक विश्वास कैसे हो सकता है? फिर वे दोनों आस्था का अलग अलग उपयोग कर रहे हैं। पॉल जब वह कहता है कि आप कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से न्यायसंगत हैं, तो वह यीशु मसीह के व्यक्तित्व के प्रति पूर्ण और संपूर्ण विश्वास और प्रतिबद्धता पर जोर दे रहा है। जब जेम्स कहता है कि आप केवल विश्वास के द्वारा उचित नहीं ठहराए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वह विशेष रूप से सही विश्वास की सहमति की बात कर रहा है, अर्थात ईश्वर एक है और किसी तरह सोच रहा है कि यह पर्याप्त है, अब काम करता है। जब पॉल कहता है कि आप कानून के कार्यों से न्याय संगत नहीं हैं, तो वह मुख्य रूप से फिर से विशेष रूप से मोज़ेक कानून का जिक्र कर रहा है, जिसका उपयोग यहूदियों द्वारा एक संकेत के रूप में उन लोगों की सीमा चिन्हक के रूप में किया जाता है जो भगवान के लोगों से संबंधित हैं। कानून एक ऐसी चीज है जिस पर भरोसा किया जाता है और यहां तक कि वे इसे बनाए रखने की क्षमता पर भी गर्व करते हैं। जबकि जेम्स के लिए मुझे यकीन नहीं है कि उसने अनिवार्य रूप से पुराने नियम के कानून या उसके कुछ हिस्सों को बाहर रखा होगा, लेकिन जब जेम्स अध्याय 2 में कार्यों के बारे में बात करता है तो मैंने जो पढ़ा है उसके आधार पर वह मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्या कार्य करता है? जब जेम्स कहता है कि आप विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से न्यायसंगत हैं, तो विशेष रूप से अध्याय 2 में जेम्स के मन में क्या काम करता है? हाँ, गरीबों की देखभाल करना, प्रेम और दान के कार्य जिनकी आज्ञा मोज़ेक कानून द्वारा दी गई थी। मुझे यकीन है कि यहीं से जेम्स को यह और यीशु की शिक्षा भी मिली। लेकिन हाँ, जब जेम्स कार्यों के बारे में बात करता है तो वह मुख्य रूप से पुराने नियम के कानून पर एक सीमा चिन्हक के रूप में ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है या कानून के कब्जे में होने और उसे बनाए रखने का दावा नहीं कर रहा है, बल्कि वह उन लोगों के लिए प्यार और दान के कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। गरीब, और इसलिए जब वह कहता है कि आप न्यायसंगत नहीं हैं, तो जेम्स की तरह आप केवल विश्वास से न्यायसंगत नहीं हैं, यह केवल ईश्वर में सही विश्वास की सहमति से है, लेकिन आप कार्यों से न्यायसंगत हैं, यानी दिखाने से उन लोगों के प्रति करुणा, प्रेम और दान जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। और उससे मुंह मोड़ने के लिए जब आप उस स्थिति को देखते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं और उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तो आप सच्चे विश्वास का दावा कैसे कर सकते हैं? अंत में शब्द उचित है, यह थोड़ा पेचीदा है। मैं निश्चित रूप से निश्चित नहीं हूं कि पॉल और जेम्स के बीच क्या अंतर हो सकता है, भले ही मैंने इस पर कुछ अध्ययन किया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि पॉल ईश्वर के साथ एक रिश्ते में प्रारंभिक प्रवेश पर जोर देता है जिसे सही ठहराया जा रहा है और उचित ठहराया जा रहा है, जबकि जेम्स, कम से कम जेम्स, एक पुराने नियम की धारणा को प्रतिबिंबित करता है जहां अच्छे कर्मों को भी तथ्यों का हिस्सा माना जाता है। किसी को सच्चा या धर्मी घोषित करते समय इस पर विचार किया जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जेम्स ने उन दोनों को शामिल किया है जिन्हें पॉल ने शामिल किया है। हाँ, हम विश्वास से न्याय संगत हैं, लेकिन इसमें वे कार्य भी शामिल हैं जो उससे उत्पन्न होते हैं, या वे कार्य जो इसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए वह अब्राहम का उदाहरण देखें जिसका वह उपयोग करता है। वह कहता है, क्या तुम यह दिखाना चाहते हो कि कर्मों के अतिरिक्त विश्वास बांझ है? हमारे पूर्वज नहीं थे, और यह दिलचस्प है अगर वह संबोधित कर रहे हैं, जैसा कि हमने अध्याय 1 श्लोक 1 को समझा, अगर जेम्स उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो वस्तुतः यहूदी हैं, जो तितर बितर हो गए हैं और अब अपनी मातृभूमि यरूशलेम से अलग हो गए हैं। अब वह कहता है, क्या हमारा इब्राहिम, हमारा पूर्वज इब्राहिम कर्मों से धर्मी न ठहरा जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया? अब वह किस पाठ से आया है? देखें कि क्या आपको याद है कि आपने पुराने नियम के सर्वेक्षण में क्या सीखा था? क्या आप कम से कम मुझे किताब बता सकते हैं? उत्पत्ति, क्या किसी को मोटे तौर पर याद है कि यह कहां घटित होता है? या फिर जेम्स के इस संक्षिप्त संदर्भ के पीछे क्या कहानी है? यह अध्याय 22 में होता है और यह महत्वपूर्ण होगा। अध्याय 22 इस बात का रिकॉर्ड है कि इब्राहिम को ईश्वर ने इसहाक को पहाड़ पर ले जाने और उसका बलिदान करने का आदेश दिया था, और निस्संदेह उसे रोक दिया गया था। वास्तव में उत्पत्ति 22 भी एक कथात्मक टिप्पणी से शुरू होती है जो यह स्पष्ट करती है कि भगवान का इरादा इब्राहिम का परीक्षण करना और उसके विश्वास का परीक्षण करना है। तो इस उदाहरण का उपयोग करने में जेम्स निश्चित रूप से सही है, लेकिन यह दिलचस्प है। जेम्स उत्पत्ति 22 से शुरू करते हैं और कहते हैं, क्या इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को वेदी पर चढ़ाकर कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया था। फिर वह कहता है, तुम देखते हो कि विश्वास कर्मों के साथ सक्रिय था और विश्वास कर्मों के द्वारा पूरा हुआ। इस प्रकार वह धर्मग्रंथ पूरा हुआ जिसमें कहा गया है कि इब्राहिम ईश्वर पर विश्वास करता था और यह उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना जाता था, जो अध्याय 15 से 5 अध्याय पहले आता है। इसलिए मूल रूप से जेम्स को इब्राहिम के ईश्वर में विश्वास पर आधारित प्रारंभिक घोषणा के बीच उस अंतर के बारे में पता है, लेकिन फिर उस विश्वास का परीक्षण जो औचित्य में भी मायने रखता है। इसलिए मुझे लगता है कि मूल रूप से जेम्स पूरी तस्वीर ले रहा है, ईश्वर के साथ रिश्ते में शुरुआती प्रवेश और उसका चल रहा परीक्षण और उसकी वैधता का प्रदर्शन। तो जेम्स कह सकते हैं, मुझे लगता है कि यह श्लोक बहुत दिलचस्प है। श्लोक 22 में आप देखते हैं कि विश्वास कार्यों के साथ साथ काम कर रहा था और कार्यों द्वारा पूरा किया गया था। दूसरे शब्दों में यह ऐसा है मानो जेम्स कह रहा हो कि विश्वास अपने आप में एक अर्थ में अधूरा है, जब तक कि इसे कार्यों के माध्यम से पूर्णता या पूर्णता तक नहीं लाया जाता है। और इसीलिए वह कह सकता है कि केवल विश्वास अर्थात ईश्वर कौन है, कि ईश्वर एक है के बारे में सही विश्वास के लिए यह सरल सहमति पर्याप्त नहीं है। इसे पूर्णता और पूर्णता तक लाया जाना चाहिए। इसे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से वैध दिखाया जाना चाहिए। अन्यथा वह कहता है कि यह मर चुका है, यह बेकार है, यह आपको बचाने में सक्षम नहीं है। तो फिर जेम्स के पास विश्वास की यह समझ प्रारंभिक प्रतिबद्धता और विश्वास दोनों के रूप में है, लेकिन यह उस विश्वास का बस एक हिस्सा है जिसे किसी के अच्छे कार्यों के माध्यम से परीक्षण और दिखाया और पूर्ण किया जाना है। यह किसी के अच्छे काम से मान्य होता है। इसे परिपक्वता और पूर्णता तक लाया गया है। यह दिलचस्प है कि वह उत्पत्ति 15 से अपना उद्धरण प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि धर्मग्रंथ पूरा हो गया था, इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया। यह दिलचस्प है, इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया और इसका श्रेय उसे धार्मिकता के रूप में दिया गया। उनका कहना है कि यह तब पूरा हुआ जब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को वेदी पर चढ़ाया। क्यों? उस कार्य के कारण आज्ञाकारिता का वह कार्य पूर्ण हो रहा है और स्वयं ईश्वर और उसके वादों पर प्रतिबद्धता और विश्वास के उसके वास्तविक कार्य को वैध दिखा रहा है। बाद वाले के बिना पहला बिल्कुल ही मर चुका है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। जिस तरह से एक टिप्पणीकार ने इसे रखा वह मुझे पसंद आया। इसमें कहा गया कि एकमात्र सच्चा विश्वास वफादार विश्वास है। मैंने सोचा कि जेम्स जो कह रहा है उसका यह बिल्कुल सटीक सारांश है। एकमात्र सच्चा विश्वास जो वास्तविक है, जिसके बारे में जेम्स कहते हैं, वही बचाता है जो विश्वासयोग्य है, जो स्वयं को मान्य करता है और उस व्यक्ति की चल रही आज्ञाकारिता और विश्वासयोग्यता के माध्यम से स्वयं को पूर्ण करता है, जो स्वयं ईश्वर में विश्वास और सच्चा विश्वास और प्रतिबद्धता होने का दावा करता है। इसलिए जब हम जेम्स और पॉल के बीच के रिश्ते के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इसे इस तरह समझूंगा। मैं जेम्स और पॉल को इस रूप में देखूंगा। मुझे लगता है कि कैनन के भीतर एक बार फिर जेम्स और पॉल के बिना बहस का मंचन करने और हमें यह बताने के लिए कि वे क्या सोचते हैं, कम से कम न्यू टेस्टामेंट कैनन के भीतर मैं उन्हें एक दूसरे के अत्यधिक पूरक के रूप में पाता हूं और एक दूसरे से असहमत नहीं है या बिल्कुल भी विरोधाभासी नहीं है। तो अब हम मंच पर आगे बढ़ रहे हैं, हम इन दोनों आवाजों को एक साथ कैसे मिलाएं? वास्तव में जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, पॉल स्पष्ट रूप से सोचता है कि विश्वास केवल बौद्धिक नहीं है। पॉल स्पष्ट रूप से सोचता है कि केवल यीशु मसीह में विश्वास होने का दावा करना पर्याप्त नहीं है। और इसके अलावा पॉल भी उतना ही स्पष्ट है कि सच्चा विश्वास हमेशा कार्यों के साथ और जुड़ा होता है। इफिसियों अध्याय 2 जैसे पाठ पर वापस जाएं। हम सभी पहले भाग को जानते हैं, आप विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं और यह आपका नहीं है, यह भगवान का उपहार है, यह कार्यों का नहीं है ताकि कोई घमंड न कर सके। लेकिन फिर वह आगे बढ़ता है और नई रचना और नई वाचा की भाषा का उपयोग करते हुए कहता है, हम अच्छे कार्यों के लिए मसीह यीशु में बनाई गई उसकी कारीगरी हैं। जिसके पास विश्वास है वह एक नई रचना में भाग लेता है जिसमें आवश्यक रूप से कार्य शामिल होते हैं। इसके अलावा यदि आपको याद हो तो पॉल द्वारा बताए गए मोक्ष के सभी आशीर्वाद नई वाचा से जुड़े हुए हैं। नई वाचा का एक हिस्सा यह है कि भगवान हमें एक नया हृदय और बनाए रखने की क्षमता प्रदान करते हैं, इसलिए परिभाषा के अनुसार नई वाचा में भाग लेने का अर्थ आज्ञाकारिता है। यह अपरिहार्य है। इसलिए नई वाचा और नई रचना की व्यापक समझ के प्रकाश में पॉल स्वयं निश्चित रूप से कार्यों को किसी के विश्वास में भूमिका निभाते हुए देखेंगे और मुझे लगता है जेम्स से भी सहमत होंगे कि दोनों अलग नहीं हैं। हालांकि यह कहना कठिन है कि क्या पॉल ने कभी उसी तरह से बातें कही होंगी जैसे जेम्स ने कहा था या क्या जेम्स ने खुद को बिल्कुल वैसे ही व्यक्त किया होगा जैसे पॉल ने किया था। क्या उन्होंने अब भी बहुत अलग जोर दिया होगा? एक व्यक्ति ने जो कहा वह मुझे पसंद आया। उन्होंने कहा, कम से कम अगर हमारे पास न्यू टेस्टामेंट के पॉल और न्यू टेस्टामेंट के जेम्स एक साथ होते और वे इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते, तो उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे होंगे और हाँ में सिर हिला रहे होंगे। बहुत सारी सहमति। फिर भी असहमति के कारण नहीं, बल्कि यह कैसे कहा गया और किस बात पर जोर दिया गया, इस कारण से एक दो भौहें और विस्मयादिबोधक भाव भी उठे होंगे। तो फिर जब हम व्यापक न्यू टेस्टामेंट कैनन के भीतर दोनों की भूमिका के बारे में सोचते हैं तो इसके बारे में सोचने का एक तरीका इस तरह है। शायद जब हम किसी तरह अपनी वंशावली और अपनी स्थिति और क्षमता पर घमंड करने के लिए प्रलोभित होते हैं, जब हम सोचने के लिए प्रलोभित होते हैं, अपने कार्यों पर गर्व करते हैं और भगवान हमसे जो चाहते हैं उसे करने की अपनी क्षमता पर गर्व करते हैं, शायद यह उस बिंदु पर होता है जहां हमें पॉल की आवाज सुनने की जरूरत है कि आप केवल भगवान की कृपा और विश्वास के माध्यम से बचाए गए हैं और यह अच्छे कार्यों के माध्यम से नहीं आता है। हालांकि हमारे जीवन में उन बिंदुओं पर जब हम यह सोचने के लिए प्रलोभित होते हैं कि किसी तरह हमारा विश्वास पर्याप्त है और शायद विभिन्न कारणों से, शायद कार्यों को हमारे उद्धार का हिस्सा बनने से बचने की इच्छा से, जब हम सोचते हैं कि किसी तरह अच्छे कार्य नहीं हैं, यह महत्वपूर्ण है, या कि हम अपने स्वयं के एजेंडे का पालन कर सकते हैं, या किसी भी तरह से हम पिछले कुछ रूपांतरण अनुभव पर निश्चिंत हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में क्या चल रहा है, तो हमें जेम्स के शब्दों को सुनने की जरूरत है, जिससे आप बच नहीं सकते हैं केवल विश्वास परंतु केवल कर्मों से। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों एक पूरक भूमिका निभाते हैं। दोनों आवाजें कैनन में एक पूरक भूमिका निभाती हैं और वे फिर से उन समस्याओं पर वापस जाकर कार्य करती हैं जिनका वे समाधान कर रहे थे। वे हमारे अपने जीवन में समान समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य करते हैं। जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और उस पर गर्व करने के लिए प्रलोभित होते हैं या फिर बस खुद को नष्ट कर देते हैं और खुद को पीटते हैं क्योंकि हमने किसी तरह पर्याप्त अच्छे काम नहीं किए हैं, तो हमें पॉल की आवाज सुनने की जरूरत है। लेकिन फिर जब हम विपरीत दिशा में जाने के लिए प्रलोभित होते हैं और सोचते हैं कि वास्तव में विभिन्न कारणों से उनका कोई महत्व नहीं है या कि हम बस किसी पिछले मोक्ष अनुभव में सुरक्षित रह सकते हैं, तो हमें जेम्स की आवाज सुनने की जरूरत है। अच्छा, इसके बारे में कोई प्रश्न? मैं बस दो अन्य विषयों पर संक्षेप में नजर डालना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे आपके नोट्स में नहीं हैं, लेकिन जेम्स की ओर से कुछ अन्य विषय वस्तुएं हैं। इस अनुभाग पर कोई प्रश्न? मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मैंने इसे वास्तव में उस तरह से व्यक्त किया है जिस तरह से मैं चाहता हूँ, लेकिन यह सबसे अच्छा है जो मैं अभी कर सकता हूँ। अच्छा, और आप जानते हैं जेम्स, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे लगता है कि हम अक्सर ऐसे समय में रहते हैं जब हम चाहते हैं, और यह सही भी है। हम भगवान के प्रेम और उनकी कृपा पर जोर देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर मैं यह कहने में साहस दिखाऊंगा कि नया नियम ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए कोई आशा नहीं रखता है जो अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव, अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह क्या है या उसे कैसा दिखना है या उसे कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन नया नियम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई आश्वासन नहीं देता है जो इस बात का जरा भी सबूत नहीं देता है कि उनके पास सच्चा विश्वास है। वे शब्द जिनका वर्णन जेम्स कर रहा है, चाहे वह पॉल हो या जेम्स, ठीक है, संक्षेप में देखने के लिए दो अन्य विषय परीक्षण और सहन शक्ति हैं। फिर ये आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन परीक्षण और धीरज या परीक्षणों के बीच धैर्य का विषय उन विषयों में से एक है जो पूरे जेम्स में दो चार बार चक्रित होता है। अध्याय एक में आपको अध्याय के दो भाग मिलते हैं जो एक बार फिर लगभग एक दूसरे के साथ विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। जेम्स अध्याय एक यह कहते हुए शुरू होता है, मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का सामना करते हैं तो इसे पूरी खुशी समझें, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धारणा यह है कि ईश्वर ही हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है, जैसा कि उसने इब्राहिम के साथ किया था। तो एक ओर जेम्स कहते हैं कि भगवान हमारे विश्वास को मजबूत करने और इसे परखने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में परीक्षण ला सकते हैं। फिर भी वह कुछ छंदों के बाद पलटेगा और श्लोक 13 में कहेगा, किसी को भी जब उनका परीक्षण किया जा रहा हो यह नहीं कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर की ओर से प्रलोभित हो रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर बुराई से प्रलोभित नहीं हो सकता और वह आप ही किसी को प्रलोभित नहीं करता, परंतु कोई अपनी ही अभिलाषा से प्रलोभित होता है और उससे प्रलोभित होता है। फिर जब इच्छा गर्भवती हो जाती है तो वह पाप को जन्म देती है, और वह पाप जब पूरी तरह विकसित हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। मेरे प्यारे भाइयों, धोखा मत खाओ। मुझे लगता है कि उन दोनों को एक साथ रखने का तरीका यह है। जेम्स कहते हैं कि ईश्वर परीक्षण लाता है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, फिर भी ईश्वर हमारे जीवन में आने वाले प्रलोभनों के लिए जिम्मेदार नहीं है, या जब वे परीक्षण पाप के लिए प्रलोभन बन जाते हैं तो जेम्स कहते हैं कि ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी ही इच्छाओं से बहक जाते हैं जो फिर गर्भधारण करती हैं और पाप को जन्म देती हैं, और फिर पाप मृत्यु का कारण बनती हैं। तो जेम्स कह रहा है कि जबकि ईश्वर पहले के लिए जिम्मेदार है, वह बाद के लिए जिम्मेदार नहीं है जब वे हमें पाप कराने के लिए प्रलोभन में बदल जाते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं से बहक जाते हैं, जैसा कि जेम्स कहते हैं। इसके अलावा पुस्तक में एक और स्पष्ट अंतर अध्याय एक में है, छंद 9 से 11 तक जेम्स फिर से, जैसा कि हमने कहा, उन समस्याओं में से एक प्रतीत होता है जिन्हें जेम्स संबोधित करता प्रतीत होता है। जेम्स जेरूसलम चर्च का नेता है और लिख रहा है यहूदी ईसाई जो बिखरे हुए हैं, और जेम्स स्पष्ट रूप से कुछ समस्याओं से अवगत हैं जिनका वे शायद सामना कर रहे हैं, और उनमें से एक चर्च के भीतर और यहाँ तक कि चर्च और चर्च के बाहर के लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक असमानता प्रतीत होती है। अध्याय एक में छंद 9 से 11 तक जेम्स अपने पाठकों के भीतर धनी ईसाइयों यहूदी ईसाइयों को संबोधित करता प्रतीत होता है, यानी मैं यहाँ उन ईसाई शब्द पर जोर दे रहा हूँ जो अमीर हैं और जो पूरी तरह से अपने धन के आधार पर खुद का मूल्यांकन करने के लिए प्रलोभित हैं। तो अध्याय एक छंद 9 और 11 में जेम्स कहते हैं, आस्तिक या ईसाई जो दीन हैं, उन्हें ऊपर उठने का घमंड करने दें और अमीरों को, संभवतः वे जो ईसाई हैं यहूदी ईसाई हैं जो अमीर हैं, उन्हें घमंड करने दें। नीचे लाया गया क्योंकि अमीर खेत के फूल की तरह गायब हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य अपनी चिलचिलाती धूप से उगता है और खेत को सुखा देता है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, वैसा ही धनवानों के साथ भी होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच वे भी मुरझा जाएंगे। इसलिए चेतावनी उन ईसाइयों के लिए भी है जो अमीर और धनवान हैं, कि वे अपनी स्थिति को आधार न बनाएं और खुद का मूल्यांकन उस चीज पर न करें जो खेत में फूल के समान अस्थाई है। हालांकि बाद में अध्याय 5 में जेम्स एक अलग समूह को संबोधित करता प्रतीत होता है और वह है अमीर गैर ईसाई शायद जमींदार जो अब गरीबों को संबोधित कर रहे हैं और मुझे खेद है गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं और जो ऐसा कर रहे हैं वे मूलतः धन संचय कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ बताया गया है कि जेम्स कैसे संबोधित करता है। ध्यान दें कि वह कौन सा अलग लहजा अपनाता है। वह कहता है, हे धनी लोगों, आओ अपने ऊपर आने वाले दुखों के लिए रो और विलाप करो। वह न्याय के कारण शोक और दुःख के लिए पुराने नियम की भाषा थी। तुम्हारा धन सड़ गया है। याद रखें कि यीशु ने पहाड़ी उपदेश में कहा था कि हमने पिछली कक्षा की अवधि में तुलना की है, तुम्हारा धन सड़ गया है और तुम्हारे वस्त्र कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने और चांदी को जंग लग गया है और उनका जंग तुम्हारे खिलाफ सबूत होगा और आग की तरह तुम्हारे मांस को खा जाएगा। आपने अंतिम दिनों के लिए खजाना इकट्ठा किया है। सुनो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी मजदूरी जो तुमने कपट से रोक रखी थी अब चिल्लाती है और फसल काटने वालों की दोहाई सेनाओं के यहोवा के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर विलासिता और आनंद में रहे हो, वध के दिन तुमने अपना मन मोटा कर लिया है। तूने उस धर्मी को दोषी ठहराया और मार डाला जो तेरा विरोध नहीं करता। और फिर वह गरीबों से कहता है, वह उन्हें अगले श्लोक में संबोधित करता है, इसलिए प्रभु के आने तक धैर्य रखो। तो अध्याय 5 में जेम्स एक अलग समूह को संबोधित करता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि फिर से इस पर बहस हुई है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि पहला समूह गैर ईसाई भी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले समूह को देखने के लिए अच्छे सबूत हैं। फिर इस विषय में जो धन और संपत्ति पर पुस्तक के माध्यम से चक्रित होता है वह अपने उन दोनों ईसाई पाठकों को संबोधित करता है जो अमीर हैं और उन्हें धन के अनुचित उपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हैं, लेकिन अब गैर ईसाई अमीरों को संबोधित करते हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, संभवतः चर्च के भीतर के सदस्य, और उन्हें आने वाले फैसले के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अपने पाठकों से चीजों को सही करने के लिए प्रभु के आगमन के आलोक में धैर्य रखने का भी आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, तो वे सिर्फ 2 खंड हैं जहां आपके पास ऐसे निर्देश हैं जिन्हें एक साथ रखना मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार फिर मुझे लगता है कि जब आप समझते हैं कि जेम्स क्या कर रहा है, धन और गरीबी पर उनकी शिक्षा, बल्कि परीक्षण और धीरज और परीक्षणों पर भी, जब आप समझते हैं कि जेम्स क्या कर रहा है, तो वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि इन प्रमुख विषयों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने का एक हिस्सा मात्र हैं। अच्छा, जेम्स पर फिर कोई प्रश्न? निश्चित रूप से आप मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। हाँ, क्या आप अध्याय 1 के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। यह विशेष रूप से नहीं कहता है, मुझे लगता है। यह विशेष रूप से यह नहीं कहता है कि भगवान आप पर ये परीक्षण लाते हैं, लेकिन यह सुझाव देता है, विशेष रूप से श्लोक 2 में, मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का सामना करते हैं तो इसे पूरी खुशी समझें, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है, चाहे आप यह कहना चाहें कि ईश्वर इन्हें आने की अनुमति देता है और उनका परीक्षण करने के लिए उपयोग करता है, या वह उनका कारण बनता है, मुख्य बात यह है कि परीक्षण का विचार यह सुझाव देता है कि इसके पीछे किसी तरह ईश्वर है, चाहे वह हो। आप जानते हैं, धर्मशास्त्री इसे घटित होने देने के शब्द का उपयोग करें या क्या, वह जानबूझकर हमारे जीवन में परीक्षण लाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से जेम्स परीक्षणों के संदर्भ में सोच रहा है, जैसे कि वास्तव में किसी तरह से विश्वास का परीक्षण करना, जो विश्वास होने का दावा करते हैं। अच्छा प्रश्न, क्या आप बाइबल अध्ययन के प्रमुख हैं?
हाँ, मैंने यही सोचा था।
अच्छा, सही। हाँ हाँ, विश्वास की प्रार्थना ठीक कर देगी। हाँ, यहाँ कक्षा में रुकने का यह अच्छा समय है। हाँ, श्लोक 13 से आरंभ, क्या आप में से कोई पीड़ित है? फिर उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कोई खुश मिजाज है? उन्हें प्रशंसा के गीत गाने चाहिए। क्या आप में से कोई बीमार है? उन्हें चर्च के बुजुर्गों को बुलाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु के नाम पर उनका तेल से अभिषेक करना चाहिए। विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचाएगी और प्रभु उन्हें उठाएंगे, और जिसने भी पाप किया है उसे क्षमा कर दिया जाएगा। हाँ, तो क्या हमें इसी तरह समझना चाहिए? क्या यह कहा जा रहा है कि यदि आप बड़ों को प्रार्थना करने के लिए बुलाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे? कुछ लोगों ने यह कहकर बचने की कोशिश की है कि यह एक आध्यात्मिक बीमारी है। संबंध के प्रकाश में जिन चीजों में हमारी इतनी दिलचस्पी है, उनमें से एक यह है कि जेम्स और पॉल कैसे संबंधित हैं, कि हम भूल जाते हैं कि जेम्स का संभवतः सुसमाचार और यीशु की शिक्षाओं से गहरा संबंध है। जितना अधिक आप इसे देखते हैं, मुझे लगता है कि यह उतना ही अधिक स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ उपचार शारीरिक बीमारी है, न कि आध्यात्मिक बीमारी। तो वह शारीरिक बीमारी की बात कर रहा है। तो क्या यह एक प्रकार की कार्टे ब्लैंच प्रार्थना है जो सभी बीमारियों और समस्याओं का समाधान करेगी? एक ओर मैं इसे खत्म नहीं करना चाहता और आप सभी प्रकार की चीजों से जेम्स 5 को योग्य नहीं बनाना चाहते। यदि यह और यह और यह और यह और इसे अंतहीन रूप से अर्हता प्राप्त करने के लिए यह सब कुछ खो देता है, तो शायद हमें भगवान से उनके उपचार के संदर्भ में और अधिक उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जेम्स ने मांगने और प्रार्थना के मुद्दे को संबोधित किया है। उदाहरण के लिए जेम्स अध्याय 3 में, ओ मुझे क्षमा करें, जेम्स अध्याय 4 कहता है, आपके बीच झगड़े और विवाद वे कहां से आते हैं? क्या वे आपकी लालसाओं से नहीं आते जो आपके भीतर युद्ध कर रही हैं? आप कुछ चाहते हैं लेकिन वह आपके पास नहीं है, इसलिए आप हत्या करते हैं और आप किसी चीज का लालच करते हैं और आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आप विवादों और झगड़ों में उलझे रहते हैं। आपके पास नहीं है क्योंकि आप पूछते नहीं। तो शायद हमें कहना चाहिए कि हमारे पास न होने का एक कारण यह है कि हम पूछने की जहमत नहीं उठाते। परंतु फिर वह आगे कहता है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि तुम गलत उद्देश्य से, अर्थात अपने सुख के लिए खर्च करने के लिए गलत रीति से मांगते हो। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम जेम्स यह उम्मीद करेगा कि हम अध्याय 5 को उसके आलोक में समझें।
हाँ, कभी कभी हमारे पास नहीं होता क्योंकि हम पूछने की जहमत नहीं उठाते, लेकिन कभी कभी शायद हम गलत उद्देश्यों से पूछते हैं। लेकिन फिर दिलचस्प बात यह है कि अध्याय 4 के अंत में ध्यान दें कि वह कहता है, अब आओ तुम जो कहते हो। अब फिर से वह धन और धन के विषय को संबोधित कर रहा है। तुम जो कहते हो, आज या कल हम ऐसे और ऐसे लोगों के पास जाएंगे एक देश और वहाँ एक साल बिताओ और व्यापार करो और पैसा कमाओ। वह कहते हैं, अभी तक तुम्हें यह भी पता नहीं है कि कल क्या होगा। आपका जीवन क्या है? क्योंकि तुम धुंध हो जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है और गायब हो जाती है। इसके बजाय तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु ने चाहा तो हम जीवित रहेंगे और यह करेंगे या वह करेंगे। क्योंकि तू अपने अहंकार पर घमंड करता है, इस प्रकार का सब घमंड बुरा है। इसलिए मुझे लगता है कि जेम्स अपने पाठकों से पूछना और प्रार्थना करने पर उनकी पूरी शिक्षा के प्रकाश में अध्याय 5 में दिए गए निर्देशों को समझना चाहेगा। वह पूछता है, हाँ, कोई विश्वास से मांगता है, आपके पास नहीं है क्योंकि आप नहीं मांगते हैं, लेकिन कभी कभी आपके पास इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप गलत उद्देश्यों से मांगते हैं। या वह उन लोगों की भी निंदा करता है जो घमंड करते हैं और यह कहने के बजाय जैसा कि वह कहते हैं, यदि प्रभु ने चाहा तो हम यह या वह करेंगे। और इसलिए फिर से अध्याय 5 को बिना सींचे उपचार के लिए प्रार्थना लेने के बजाय जो बड़ों को प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं और आप ठीक हो जाएंगे, उसे कम किए बिना या उसमें से शक्ति निकाले बिना, निश्चित रूप से जेम्स का मतलब हमारे लिए है यह समझने के लिए कि अध्याय 3 और 4 की शुरुआत में उनकी पूरी शिक्षा के प्रकाश में भगवान से पूछना और भगवान पर भरोसा करने और विश्वास करने का क्या मतलब है, यहाँ तक कि अध्याय 1 में इन परीक्षणों के बीच भी। ठीक है, आपका ईस्टर मंगलमय हो और मैं आज से एक सप्ताह बाद आपसे मिलूंगा। यह न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं, जेम्स और पॉल पर व्याख्यान 30।